विष्णु प्राण जिस प्रकार से हमारे संप्रदाय में समस्त भागवत को अमल प्रमाण कहा जाता है, उसी प्रकार से रामायण संप्रदाय में प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है विष्णु पुराण। उस विष्णु पुराण से इस विष्णु पुराण में विष्णु पुराण में पराशर जी का ये वचन है। इसके साथ में और भी दो श्लोक और हैं इसके संबंध में। इसमें स्वधर्म आचरण से पराक्रम धर्म से उत्पन्न भक्ति को चैतन्य महाप्रभु जी ने बाध्य कर कारण जो हमने कारण अभी तक मुखबंध में बतलाया है, इसमें देहाशक्ति है और इसका फल भोग भी पृथ्वी पर ही है भोग मोह। और यदि उसको भी कहें सिद्ध लोगों की बात, जो निर्वाण मोक्ष पाते हैं उनको भी सिद्ध लोग में करती है, वैकुंठ में उनकी करती है। इसलिए दर्शनाश्रम धर्म की भक्ति जो है, भक्ति तो आराध्य है, ठीक है, साध्य है, किंतु विष्णु पुराण में जो दर्शनाश्रम से जो भक्ति होती है वो बाह्य है। और इसका कारण हमने पहले बतलाया विशेष महाप्रभु जी ने कहा यह बाह्य आगे कह आ तब तो वो कहते हैं रात है कृष्ण कर्मार्पण साधता। कर्म बंधन, इसलिए कृष्ण के चरण में कर्मों को अर्पण करो। जो कुछ करते हो, जो कुछ खाओ, उसके लिए गीता का यह श्लोक प्रमाण दिया, जत करोति जो कुछ करते हो, जगत नाति जो कुछ खाते हो, जज होती जो कुछ हवन करते हो, ददाति जो कुछ दान करते हो, जत तपस्यति जो तपस्या करते हो, हे कौन मुझको अर्पण। गीता में और भी कहा गया है यज्ञार्थात कर्मण लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कौन संतेय मुक्त संग समाज। कर्म में आसक्ति को संपूर्ण रूप से छोड़कर विष्णु के लिए ही जितने कर्म करो उनको प्रसन्न करने के तो ये यज्ञ होगा। और यदि ऐसा नहीं करेगा, अपने लिए करेगा तो बंधन। इसलिए कर्मों का तो त्याग करना है, किंतु कर्मों का कहां त्याग किया जाए, कहां त्याग करें? तो इसीलिए कृष्ण करें मां मेरे प्रति उसको अर्पण करो। एक चीज को समझो, एक अर्पण करके तब करना, और एक करके तप अर्पण करना। हमने खाया लौकिकी वैदिकी वाक जा क्रिया क्रिय थे मुने हरिचरवाद कुल्यन साक्षात्या कहा गया है। लौकिकी भी तो इसमें लौकिकी को भी जो कुछ करते हैं जो कुछ खाते हो सब कुछ त्याग नहीं तो बंधन होगा। दो उपाय है, पहले अपने को अर्पण कर लो। इति पुनसार पिता विष्णु नौलक्ष क्रियते क्या तात्पर्य पहले अर्पण कर लो अपने को। मैं तुम्हारा हूँ मान संदेह व्यवहार जो कुछ हो आरती हूँ तुम्हार पदे नंद पहले ये कर लो और इसके बाद में कर्म करो बंधन नहीं होगा। और करके कर्म और तब अर्पण करोगे तो उसका फल कुछ छोड़ो। इसलिए इसी श्लोक में भी कहा गया भगवत भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पहले अपने को अर्पण करो। ऐसा नहीं कि श्रवण कीर्तन करो और इसके बाद में ओ कृष्णाय नमः कृष्ण अर्पणम् भक्त ऐसा मत करो। ये बंधन थोड़ा सा डिफरेंस है मालूम होता है कि कोई डिफरेंस ही नहीं है किंतु है इसमें डिफरेंस। इसलिए ये यहां पर बतलाया जप करो कि जो कुछ करो हवन करो खाओ पियो चलो फिरो जो कुछ भी करो हमको प्रभु कहे यो बाज्य। आगे कहा प्रभु जी ने कहा यो बाज्य क्यों कहा इसमें भी शरीर में आसक्ति है और स्वरूपानुबंधी इसमें कुछ भी नहीं है। सेवा की बात कृष्ण की सेवा की बात इसमें क्या है अभी तुम करो और तुम दो। तुम माने यह शरीर इसलिए स्वरूपानुबंधी नहीं हुआ आत्मागत ये नहीं है इसलिए कहा यह हो बाध्य इसको बाहरी बतलाया। राय कहे तो धर्म त्याग यही चाक्षा राजी कहें स्वधर्म त्याग स्वधर्म मैंने आत्मधर्म को नहीं करे बड़ा समझा। अब तक तो बतलाया जो कुछ करो अर्पण करो अर्पण में भी कृष्ण को तुम क्या अर्पण करोगे कृष्ण का ही तो सब कुछ है अर्पण तुम कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारा कोई चीज रहे तब तो तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं इसलिए अर्पण भी ठीक नहीं। जैसे श्रीमद्भागवत में बतलाया गया है तो भी महाप्रभु जी ने कहा कि आगे कहिए योग बात के बाहरी आत्मा से संबंधित स्वरूपानुबंधी नहीं है भक्ति के सेवा कृष्ण की सेवा के लिए कुछ इसमें संबंध ही नहीं है। तब उन्होंने कहा स्वधर्म का त्याग स्वधर्म का त्याग वर्णाश्रम धर्म का त्याग स्वरूपतः ऐसा नहीं कि कर्मफल को त्याग कर कर हो गए। एक जब गीता में भी कहा गया है स्वसन्यासी याद है न चाक्रिय जो कर्मफलों का त्याग करता है वो यथार्थ सन्यासी है अन्यथा कर्मफल का त्याग नहीं करता वो सन्यासी भी है निरग्नि भी नहीं है
चाहिए चाहिए।
इसलिए यहां पर कह रहे हैं स्वधर्म का त्याग करो स्वरूपतः कर्मों का फल भोग भी त्याग करो और साथ साथ उस कर्म को स्वरूपतः त्याग करो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जीव गोस्वामी अपनी गीता की उसमें बतला रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की गीता प्रसिद्ध है, उसमें से स्पष्ट रहे सर्वतक कर्मों का त्याग करो, जो भक्ति का अनुकूल नहीं है उसका संपूर्ण रूप से त्याग करो। वो कर्म कारण नहीं है यदि भगवान के लिए किए गए, इसलिए उसको नहीं बतला रहे। धर्म त्याग यही चाध्रता।
अच्छा, धर्म त्याग के संबंध में
दो उदाहरण दिए, एक श्रीमद्भागवत से एक गीता से। अज्ञायन गुणा दोषान मयादृष्टान स्वकान धर्मान संसज जस कुमान सर्वान मां भजे सच सम। वेद शास्त्र और पुराण इत्यादि धर्म शास्त्रों में भगवान ने जो कुछ धर्म का उपदेश दिया है कि ये तुमको करना चाहिए, तुम्हारा जो धर्म है उसका गुण और दोष विचार कर और उनको छोड़ करके जो हमारा भजन करते हैं वे सप्तम है, सत्तम सप्तम। इसमें एक विचार समझो, स्वधर्म का त्याग कौन करता है? तीन प्रकार के व्यक्ति स्वधर्म का त्याग करते हैं। एक तो मूर्ख, जिसको हिताहित का कर्म का ज्ञान नहीं, मूर्ख अज्ञानी, और दूसरा नास्तिक व्यक्ति, इन कर्मों में विश्वास नहीं रखता। कैसे विश्वास नहीं रखता? आज आप लोग साक्षी गोपाल नहीं गए, ये गोपाल वृंदावन में रह रहे थे और साक्षी देने के लिए विद्यानगर आए, कितने माइल आए, हजारों माइल, 5,000-6,000, वो भी पैदल आए और साक्षी दिया और वहां से जगन्नाथ जी के मंदिर में आए और भोग लगने पर उनका सारा प्रसाद हजारों मन भोजन खुद कर लेते और जगन्नाथ के लिए कुछ नहीं रखते, भूखे रहने उनको। साक्षी स्वरूप में, साक्षी गोपाल में सब उनको काफी जमीन जायदाद देकर के मंदिर बना करके वहां रखा गया। तो वो मूर्ति है न स्वयं भगवान है, लोगों को फिर भी विश्वास नहीं होगा। जो ठाकुर जी कहते हैं हमको जो यशोदा मैया मक्खन खिलाती थी, अब तुम नमक भी नहीं देता, मुझसे खाया नहीं जाता, ऐसा बोलती बातचीत करती है, तो नास्तिकों को ये सब देख करके ही सब कहते हैं ये सब ठकुसला है, बेकार। तो नास्तिकों को कर्मों में विश्वास नहीं, पिता की सेवा करने से अगले जन्म में वो सुखी होगा, माता की सेवा करने से वो सुखी रहेगा, इस कर्मों में विश्वास नहीं, इसलिए नास्तिक व्यक्ति ये सब सब कर्मों को, वेदविहित कर्मों को नहीं करते, उनमें विश्वास नहीं। और तीसरा, जिनको भक्ति में दृढ़ विश्वास है, शास्त्र के वचनों में भी दृढ़ विश्वास है, ऐसा व्यक्ति शास्त्रों के उपदेश अनुसार, गीता और भागवत के अनुसार सद्धर्मों का त्याग करते हैं। किस स्थिति में? एक स्थिति है, वो स्थिति है तावत कर्मानुपूर्वी स न निर्वेदेश जावता मत्था प्रणाम वा श्रद्धा चवन न जाए। पाप कर्मानुकूल भी ये कर्म तब तक करो चाहे वो भगवतार्थी हो चाहे व्यासार्थी कर्म हो, उन कर्मों को कब तक करें? तावत कर्मानुकूल न निर्देश देख जाओ, जब तक कि कर्मों के फलों को देख करके, भोग करके, शास्त्रों को, वचनों को देख करके उसे निर्देश नहीं हो जाए। देखा ये बंधन का एक कर्म छोड़ नहीं सकता, सब वो कर्मों को छोड़ेगा। अथवा वास्तवधन न जावते, जब तक कि भगवान की कथाओं में, लीला कथाओं में, भगवान की कथाओं में सुनने में श्रद्धा नहीं आती तब तक करो। जहां श्रद्धा हो गई छोड़ो, तब भगवान के लीला कथाओं को सुनो, भगवान के लिए सारी क्रियाओं को करो। इसलिए ऐसा श्रद्धालु लोग शास्त्र वचन पर विश्वास रख करके, किंतु ये समझ रखो इन दोनों के मूल में क्या है, साधु संघ। साधु संघ सबके मूल में है, उसी से निर्वेद होगा और उसी से हरि कथा सुन करके इनके प्रति भी भावना कर्मों का त्याग करेगा।
भागवत वाले श्लोक में जग सर्वान संतज्य मांग भजे सप्तम, सप्तम माने क्या?
उत्तम साधु,
कृपालु, अक्षत दो, मौनी, सप्तका, विजी, सर्वगुण, और ये 26 गुण बतलाए गए हैं, इनको सप्तम कहा गया है। इनको ये सब गुण हो तो इस व्यक्ति को जो सब धर्मों को छोड़ करके, हमारे आदेश को भी छोड़ करके, गुण दोष विचार करके हमारा भजन करता है, वो भी ऐसा ही सप्तम है जैसा कि वो लोग हैं, 26 गुण वाले, इसलिए सप्तम कहा। और भी एक श्लोक उन्होंने कहा राय रामानंद जी ने, सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम ब्रज अहम स्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ करके, मैंने यहां पर बड़ा सम धर्म समझना, शरीर और मन से जो बड़ा सम धर्म किया जाता है, सब धर्म जो अब तक कह गए हैं कृष्ण पैसे सबको छोड़ करके, माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम कृष्ण के अरुण की तरह मूल जी को, मैं जो कृष्ण हूं एकमात्र हमको शरणम ब्रज, हमारा शरणागत हो, अहम स्वाम सर्व पापे भोग मोक्षयिष्यामि, समस्त पापों से यदि कुछ इसमें पाप दिए छोड़ने से धर्म को तो शोक मत कर, मैं सबसे छुटकारा कर दूंगा। सब धर्मान प्रत्यज्य बनाकम धर्म का त्याग किया और एकमात्र कृष्ण को के चरणों में शरणागत हुआ। किंतु एक बात है, अर्जुन को मालूम होता है यहां माता पिता घर बार स्त्री पुत्र छल सब छोड़ देंगे, विवाहिता स्त्री को छोड़ देंगे तो पाप लग सकता है, पाप लगेगा क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। तो कृष्ण कहते हैं डरो मत, सब पापों से छुटकारा दे दूंगा, मुक्ति कर दूंगा, मुक्ति दे दूंगा। इसमें मालूम होता है कि थोड़ा थोड़ा डर है, भगवान के शरणागत में आकर और धर्मों को छोड़ देने में इसको डर है, माता को, पिता को, भाई को, बंधु को, देश को, समाज को छोड़ करके जाने में वृद्ध माता पिता को छोड़ करके जाने में, ये तो पाप लगेगा। किंतु भागवत में कहा गया है जो सब कुछ छोड़ करके पितृ ऋण ऋषि ऋण उनको छुटकारा दे देते हैं। इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, शरणागति कृष्ण के प्रति सबको छोड़कर के शरणागत होना, ये तो बहुत ऊंची बात है। महाप्रभु जी ने इसको भी कहा, यह बात जाके कहा, इसको भी बारी बतलाया। शरणागति, शरणागति क्या है? अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से विवर्जन, रक्षति के विश्वासो वक्तु से वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये सर्वविधम अस्ति। अनुकल्प भक्ति के अनुकूल जो हो दृढ़ता से उसको ग्रहण करो, दृढ़ता से, उसमें बाधा है तो बाधा मत मानो। भक्ति का अनुकूल हो और भक्ति के प्रतिकूल अपना प्रिय से प्रिय व्यक्ति या कोई कार्य भी है उसको छोड़ो। भक्ति के अनुकूल ग्रहण, भक्ति के प्रतिकूल उसका दृढ़ता से त्याग। और कृष्ण रक्षा करने वाले हैं, हम उनका शरणागत होते हैं। रक्षा विश्वास हो और दम दृढ़ विश्वास हो कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। रक्षा विश्वास हो गोपित्व वर्णन, अब उसको वर्ण कर लिया तो वही हमारी रक्षा है, दूसरा नहीं। यदि विपत्ति आई तो बिल बिलाने लगे कृष्ण भूल गए, जब तक ठीक है तब तक तो ठीक है मैं शरणागत। आजादी पति आई था कृष्ण को छोड़ करके हमारी रक्षा कर दूसरों से, ये शरणागति नहीं। भक्ति से वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य दीन ही शरणागति सुनी। और कार्पण्य, कार्पण्य आत्मनिक्षेप, आत्मसमर्पण, इसको कहा गया है शरणागति। शरणागति भक्ति का अंग नहीं है, भक्ति का सोपान है। आपको वो सोपान वहां तक पहुंचा देगी, कहां भक्ति के दरवाजे तक पहुंचाएगी। भक्ति अभी नहीं, इसमें सेवा नहीं है, सर्वगत नहीं है, सोपान है ऐसी उच्च कोटि की। अर्जुन को भगवान ने जबकि ये उपदेश दिया है, उस समय अर्जुन मन ही मन सोच रहे हैं बृहद भगवत सामृत के अनुसार, सोच रहे हैं। गीता में तो इसका कोई पता नहीं चलता, बृहद भगवत सामृत मैं सखा इनका और हमको ये सर्वधर्मान का उपदेश दे रहे हैं, क्या मैं शरणागत भी नहीं हूं? इसलिए हमको इन्होंने वंचना की इन उपदेशों से। ये सब वंचनाएं हमारे लिए, हमको तो यदि कहते ये हमको ब्रज भक्ति दीजिए, तुम ब्रज की भक्ति करो, हमारा आशीर्वाद है, हमारे कृपा से तुमको ब्रज की भक्ति मिल गई, तो ये कृपा होगी। और ये तो हमारी वंचना हुई। क्या सचमुच में अर्जुन सखा होने पर भी भगवान के शरणागत नहीं थे जो उनको कहा? हे सखा थे, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ऐसा उन्होंने कहा। सिंहोपाध्य करने का तात्पर्य क्या है? ये बाहरी है, इसमें आत्मा संबंधी है नहीं, स्वरूपानुबंधी है नहीं है, इसमें कृष्ण की कोई सेवा भी नहीं। और डर भी है कि ये वेद शास्त्रों का आदेश नहीं पालन करने से तो हमें पाप लगेगा। इन सब कारणों से महापुरुष जी ने कहा, यह बात आगे कहा, राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साधन। अब तक तो कर्म मिश्रा भक्ति का वर्णन किया, अब यहां पर शुद्ध भक्त यहां कर्म ज्ञान मिश्रा भक्ति का उदाहरण दे रहे हैं। ज्ञानी प्रयास करते और भक्ति से मिला हुआ ज्ञान एक है। भक्ति से मिला हुआ ज्ञान वो तो कुछ ऊपर है और ज्ञान से मिला हुआ भक्ति ज्ञान की भक्ति के टीका है। भक्ति अपना फल देकर के अपन का ध्यान किंतु उससे बोलते और ज्ञाति का भक्ति से करने से क्या समझ में आता है। तीन प्रकार के ज्ञान हैं। तत् पदार्थ का ज्ञान, तम पदार्थ का ज्ञान और जीव और ब्रह्म ऐक्य एक ज्ञान। तीसरा जो जीव और ब्रह्म ज्ञान का ऐक्य है ये भक्ति का विरोधी है, इसलिए इसको तो संपूर्ण रूप से छोड़ी गया क्योंकि इसमें संबंध ज्ञान ही लुप्त हो जाता है। संबंध ज्ञान रहता है तो संबंध ज्ञान नहीं है तो सेवा की वासना भी कहां से आए, इसलिए इसको छोड़ो। और पदार्थ का ज्ञान और कम पदार्थ का ज्ञान, तत्पदार्थ माने भगवत तत्व का ज्ञान, जीव तत्व माया तत्व ये सब की जानने की जरूरत होती है। ऐसा ज्ञान जो तत्पदार्थ का ज्ञान है और कम पदार्थ का ज्ञान है, तत् माने क्या भगवत तत्व, भगवत तत्व इसके अंतर्गत में जीव तत्व माया तत्व सभी की चाह है। इसलिए ये कुछ कुछ सहायक है कुछ हद तक पहले प्रारंभ में ये जरूरत होती है किंतु अंत में इसकी भी जरूरत नहीं होगी, ये आगे हम लोग बताएंगे। इन तीनों ज्ञानों से जो शून्य रही इन तीनों से मिश्रित भक्ति तो हो गई ज्ञान निष्ठा भक्ति, और तीनों से अमिश्रित हो वो समा भक्ति। इसमें दिया है ब्रह्मभूत प्रसन्ना न सोचती न पांचती समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा। इसमें ब्रह्मभूत माने जब ब्रह्मभूत जीव हो जाता है उसके छह लक्षण हैं आत्मा अपहत पापमा पाप नहीं दे बिगड़ो जिसमें वृद्धावस्था है बिगड़ो विषो को और अपिपास सुधा कृष्णा इत्यादि काम इत्यादि हो ये सब नहीं है तब उसको ब्रह्मभूत ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। ब्रह्मभूता में अनावृत चैतन्य को कहते हैं ब्रह्मभूत, ब्रह्म अथवा कृष्ण अनावृत चैतन्य है। जीव भी जब अनावृत चैतन्य हो जाता है तो उसको ब्रह्मभूत है, उसका लक्षण ये सब अंडरस्टैंड। अगेन ब्रह्मा अनापित चैतन्य विज्ञान कवर अनकवर चैतन्य जीव ऑल्सो एक ही बिकम लाइक दैट। जब जीव अनापित चैतन्य हो जाता है ब्रह्म में मिलता नहीं है किंतु ये भी अनापृत माया के द्वारा आकृत नहीं रहता, ऐसा ही हो जाता है जब न सोचती न कांक्षती। कोई चीज प्राप्त होकर के नष्ट हो जाए तो सोचे तो नहीं करता, किसी की भी चीज यदि आ गया और वो नष्ट हो गई थी, भाई बंधु धन संपत्ति और सब कुछ, उसके लिए शोक नहीं करता, न कांक्षती। और जो चीज नहीं है उसके लिए आकांक्षा नहीं करता है, अभिलाषा नहीं करता है। समस्त देश विदेश समस्त प्राणियों में वो सम है, वो ऊपर के विचार से नहीं चलता। ये लंगड़ा है, बूढ़ा है, गोरा है, काला है, ये सब विचार है। आत्मा दृष्टि से चलता है, आत्मदृष्टि। अष्टावक्र को जानते हो? ऐसे में अष्टावक्र अपने हिमालय के आश्रम से जनकपुर में महाज्ञानी जनक जी के दरबार में आए और उसको देख करके उसका दृढ़ापन सब लोग हो करके हंस उठे। जनक जी सबको हंसते हुए देख करके ये भी हंस दी, तो वो भी अष्टावक्र भी लाठी रख करके और बड़े जोश में हंसने लगे। राजा जनक ने पूछा, ये लोग तो हंस रहे हैं आपके अंग के टेढ़ापन पर, कुबड़े पर, आप किस लिए हंस रहे हैं? तो हंसना नहीं रहा हूं, रो रहा हूं। मैं महाराज जनक के दरबार में आया था, सुना था कि बड़े बड़े पंडित लोग हैं, ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं, सब प्राणियों में सम है, किंतु सब चमार मोटी है। चमार माने सुलेकर ये लोग ये देखते हैं कि अच्छा चमड़ा है कि
बुरा चमड़ा है,
कोई खराब चमड़ा है, इनको ज्ञान है। आत्मतत्व का ज्ञान किसी को नहीं है, इसलिए मैं हंसता और मैं चल रहा हूं। इस सभा में सभी ऐसे ही चमार मुखी बैठे हैं, वहां पर बैठने की कोई जरूरत नहीं, कोई लाभ नहीं होगा, ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं आएगा। जब चल रहे महाराज जनक उनके चरण में गिर गए, क्षमा क्षमा मांग करके सबके रूप को बैठा। ये तत्व ज्ञान है, समदर्शी होते हैं। व्यक्ति कलापन या गौरवर्ण का या बुद्धि और ये सब की कोई भी आत्मतत्व में विचार नहीं होता है। विचार होता है सत्सुपाल मंदिर गुण जो है उस पर विचार होता है। भगवत तत्व को जानता है, भगवान की कथा जानता है, तो सब ठीक है, और नहीं तो उसका कोई भी मूल्य नहीं है जगत का। तो समस्त सर्वेश भूतेश यदि ऐसा है, मत भक्ति लगते ही परा तो मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। यहां पर ब्रह्मभूत जो ज्ञान है ये साधन तो उच्च कोटि का नहीं है, किंतु एक बात है इसमें, उदाहरण इसलिए लिया इसमें कुछ संभावना है पराभक्ति के लिए। पराभक्ति माने प्रेमा भक्ति, इसके प्रेमा भक्ति होने की संभावना है यदि साधु संग हो जाए तो, और अपराधी नहीं हो तो। वृंदावन के साधुओं में, मायावादियों में, अद्वैतवादियों में, ज्ञान के साधकों में कुछ क्या कर, वे भागवत का पठन पाठन करते हैं और भगवान के चरण में अपराध नहीं करते हैं, इसलिए उनको साधु संग होने की संभावना है, इसलिए इसको कहते हैं कि प्रेम भक्ति। किंतु हो ही जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। किंतु यदि ऐसा हुआ, कोई वृंदावन के रहने वाले साधु लोग और कई बारी लोग जो ज्ञान से साधक हैं, साधन कर रहे हैं, और बाय चांस वहां पर किसी संत से मिल गए और संत से मिलने से क्या हुआ, भगवान की मुख उनके मुख से हरि कथा दे दी सुना, तो साथ ही साथ में उनको प्रेमा भक्ति होने की संभावना है, इसलिए इस चीज को बतलाया है। इसमें एक और बात है, इस श्लोक की व्याख्या हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने किया है, जी गोस्वामी ने भी किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, देखो जिस प्रकार से मां माने कलाई, कलाई होती है कलाई मुख दर्द, मुंह उड़द की दर्द, मुंह हरी हरी या पीली पीली मुंह होती है, या उनकी भूसी हो और उसमें एक स्वर्ण कणिका उसमें मिल जाए, तो कुछ दिनों के बाद में ये मुंह और उड़द और उसकी भूसी गल जाए, नष्ट हो जाएगी, सड़ गल जाए, चाहे एक वर्ष दो वर्ष चार वर्ष में गल जाए, किंतु स्वर्ण का जो कणिका है उसमें मिला हुआ है तब तक मालूम नहीं होता है, वो देखा नहीं जाता, वो मालूम पाता है कि वैसे ही मुंह का भूसा या दाना या कुछ है या सब तो पीला होता है, उसके साथ में मिल जाए, कहीं आग लग गई तो क्या होगा, वो सब जल करके राख हो जाएंगे, किंतु स्वर्ण कणिका तो वो गलती है और न जलेगी ही, वो पीछे से पीछे हो जाए। ऐसे यहां पर जो ज्ञान निष्ठा भक्ति कहा और उसमें भी कहा ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षित, ये शोक कुछ नहीं करते हैं और कुछ इच्छा भी नहीं करते, तो ब्रह्म है ज्ञान की इच्छा भी नहीं करते हैं जो लोग, और संतों से मिलते हैं वृंदावन के, और संतों से मिलने से उनकी हरि कथा सुनते हैं, तो स्वर्ण का क्या बाकी है, वो तो विकसित हो उठती है और साथ में ब्रह्मा ऐसा ज्ञान जो होता है वो सपना कैसे होता है, अपराधी नहीं है कृष्ण की लीलाओं का या भागवत के प्रति या भक्तों के प्रति या भक्तों के चरित्र के प्रति कोई अपराध नहीं, प्रहलाद चरित्र और दूसरे चरित्रों को, गोपियों के चरित्रों को, भक्तों के चरित्रों को सुनते हैं और सुनने से क्या होता है, उनको जो उज्ज्वला जो भक्ति है कर्ण का, वो तो भगवान की संपीत और राजनीत की वृत्ति है, भक्ति माने वृत्ति है, वो कभी नष्ट नहीं होती है, कभी कभी अंतर्ध्यान हो जाती है अपराध होने से, और अपराध न हो तो वो समुज्वल होकर के उसको प्रेमा भक्ति, इसलिए संभावना अर्थ में इसका ये बतलाया है, यदि ऐसी संभावना हो, क्यों कहा, इसका कारण तत्में महान मुखरता मधुरित चरित्र सरिता समंती क्या तात्पर्य, साधुओं के समूह में जाने से वृंदावन में जाओ, बस साधु के निकट बैठ जाओ और बैठने से क्या, तस्मिन महान मुखरता, महत्व जो व्यक्ति हैं उनको तेल लता पूर्ण आदमी को दे करके उनकी भक्ति उत्सुक हो जाती है और वो महान मुखरता, वो खुद ही जैसे कैलाश पर्वत के नीचे मान सरोवर से नदियां अपने आप बहती हैं, ऐसे संतों के हृदय से द्रवित हो जाता है, उनसे मुखरित हरि कथा निकलने लगी। उस कथा का यदि कोई पान करे तो क्या होगा, उसका खुदा कृष्ण भय पाशा इत्यादि जगत की जितनी भी इंद्रिय है सभी शोक मोह भय सब स्वतं प्रसंगम वीर्य संविदौ भवन प्रेत कर्ण कथा तद्योतना तु अपनी श्रद्धा भक्ति क्या स्वतं प्रसंगम वीर्य संविदो भवन के रित कर्ण रसायन अपने आप को उसे पूछने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ बस और देखो तो नदी निकली फॉर्म से अपने आप हरि कथा। उनको चाहिए श्रोता, यदि पशु पक्षी भी श्रोता मिल जाए लता दूध भी पेड़ भी कोई भी मिल जाए और मनुष्य मिल जाए तो और क्या, प्रभुपाद जी बच्चे को देकर के हरि कथा बोल देते, खाना पीना भूल जाते हैं लोग, किसी प्रकार से बच्चों को भी हटा देते थे प्रभुपाद बिगड़ जाते थे। लड़के को क्यों हटा दिया, कभी हरि कथा बोल रहे हैं भाव में मग्न है तो इशारा कर दिए प्रभुपाद जी का खाने का समय हो गया आप हट जाओ, तो हटा देते थे तो बड़े बिगड़ जाते, व्यघात होता था उनकी हरि, लोग नहीं समझते साधारण। तो वही कहते हैं